आज हम वानप्रस्थ आश्रम के बारे में बात करेंगे, जो 16 संस्कारों की चर्चा चल रही थी। तो 16 संस्कार लाइफ में जो भी चीजें पहली बार होता है उसको सेलिब्रेशन करने का नाम है संस्कार। और अभी तक हमने लास्ट टाइम विवाह संस्कार और विवाह संस्कार के बाद जो गृहस्थ आश्रम है, लाइफ ऑफ हाउस होल्डर, एक गृहस्थी जीवन के बारे में कुछ चर्चाएं की। अब आपके बच्चे बड़े हो गए, शादीशुदा, वो भी उनकी भी विवाह हो गया, बच्चे हो गए, आपकी भी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, तब आप क्या करें? तो ऐसा लगता है जैसे लाइफ के आगे वैक्यूम है, बच्चे पास में नहीं है, अगर है तो उनकी अपनी लाइफ है, आपको अभी आपकी जरूरत बहुत कम है, अगर कहीं थोड़ा बहुत जरूरत है ऐसा लगता है जैसे आपको कोई यूज कर रहा है, क्योंकि उसमें आप ना वो पहले की तरह रेस्पेक्ट है, ना पहले की तरह ऐसा फीलिंग है कि आप यू आर नीडेड, तब क्या करें समझ में नहीं आता है। आज हम चर्चा करेंगे आज की जो रिटायर्ड लोगों की लाइफ कैसी है, और वानप्रस्थ आश्रम जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो कितना सुंदर उस सिस्टम को डेवलप करने की हमारे ऋषि मुनियों की व्यवस्था थी। तो उस वानप्रस्थ आश्रम में जब आप प्रवेश करें, रिटायर्ड लाइफ में जब आप प्रवेश करें, वो भी सेलिब्रेशन का विषय होता है, और उस सेलिब्रेशन को हम वानप्रस्थ संस्कार कहते हैं। तो वानप्रस्थ संस्कार क्या? ऐसे वो सेरिमनी, वो संस्कार जिसके द्वारा व्यक्ति अपने गृहस्थी जीवन को पूरा करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है या रिटायर्ड लाइफ में प्रवेश करता है। रिटायर्ड लाइफ में प्रवेश करने का 3 बेसिक गोल है जिसको हम वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। पहली चीज कि व्यक्ति ग्रेजुअली अपने जो फैमिली रिलेटेड मैटर है उससे अपने आप को हटाता है, विड्रॉ करता है, और उसका ज्यादा फोकस अब सोशल या कम्युनल सर्विस के लिए होता है, सोसाइटी के लिए या कम्युनिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सके, जो टाइम, जो मनी, जो फिजिकल एफर्ट्स वो फैमिली के लिए देता था, अब वो सब सोशल सर्विस के लिए, सामाजिक दूसरों का भला कर सके और खुद की भी भला कर सके, जो इतने सालों तक टाइम नहीं मिला बचपन से अपने आप को स्किल्ड करना कि जिससे कि वो कुछ कमा सके, सोसाइटी में कुछ बन सके, फिर विवाह के बाद बच्चे, परिवार, उनके पालन पोषण के लिए ना समय था ना एनर्जी थी, वो सब चीजें आप अभी आप कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा फोकस करना और सोसाइटी के लिए सेवा करना, और तीसरी जो थी अपने आप को प्रिपेयर्ड करना नेक्स्ट स्टेज के लिए। नेक्स्ट स्टेज क्या? जब आप बहुत अच्छी तरह बुढ़ा हो जाएंगे, आपके शरीर कम काम करने लगेगा, हो सकता है कोई आपको पूछे न पूछे, आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी भी आ सकती है, और लोनलीनेस, और आपको पता है ओल्ड एज में जब हमारे शरीर बहुत कम काम करने लगता है, मेमोरी कम होने लगता है, तो क्या प्रॉब्लम होता है आपके आसपास एरिया में आप देख सकते हैं, या जो आपके 80, 90 प्लस इयर्स लोग हैं उनकी क्या हालत है वो आप उनसे समझ सकते हैं। उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड करना, पर हमारे सनातन धर्म में उनको इतना बेबस और लाचार बनाने तक भी मौका नहीं था, उसके लिए भी तैयारी थी कि वो जो लास्ट टाइम आपका हो आप पूरी तरह रिनाउंस्ड लाइफ लीजिए, जिसको संन्यास आश्रम कहते हैं, जिसकी चर्चा भी हम और कभी करेंगे। तो वानप्रस्थ आश्रम की क्या जरूरत है रिटायर्ड लाइफ में ये सब करने की क्या जरूरत है, एक रिटायर्ड लाइफ के लिए अलग से प्लान करने की क्या जरूरत है और वो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, इसको समझने के पहले हमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए रिटायर्ड लाइफ के बारे में। और वो है, जो लाइफ है उसकी दो तरह का नेचर होता है, एक प्रवृत्ति परक नेचर है, एक निवृत्ति परक। प्रवृत्ति, हमारे अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं, कुछ विशेष या कुछ एस्पिरेशंस होता है कि हम मैटेरियल वर्ल्ड को वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में हम एंजॉय करें। वो एंजॉय सेंसुअल एंजॉय भी हो सकता है, इंद्रियों के द्वारा सुख भी हो सकता है, मानसिक सुख भी हो सकता है ईगो लेवल पर। वो क्या कि लोग मुझे पसंद करें, अप्रिशिएट करें, मेरा बहुत नाम हो, मैं बड़े पोस्ट पर रहूं, बहुत मेरे पास एक्सट्रीम पैसा हो, ये सब ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। और सेंसुअल प्लेजर है, मैं अच्छा खाऊं, अच्छा देखूं, मेरे जो इंद्रियां हैं उनको मैं सेटिस्फाई करूं। ये है प्रवृत्ति मार्ग, मतलब सांसारिक चीजों में इन्वॉल्व होने का रास्ता। ये हर ह्यूमन बींग के अंदर, मनुष्य के अंदर ये प्रवृत्ति होती है। पर एक चीज और भी हमारे अंदर है, वो है निवृत्ति, जो द एटीट्यूड ऑफ विड्रॉल, मतलब सांसारिक चीजों से मन को हटा के थोड़ा हम अपने आत्मा की ओर जॉइनिंग करें, सेल्फ को जानना, समझना, रियलाइज करना, इसके लिए हम कुछ कोशिश करें। प्रवृत्ति तो फिजिकल है, बॉडी को, माइंड को, सेंसेस को सेटिस्फाई करना। निवृत्ति मार्ग आत्मा को सेटिस्फाई करना। तो आप कहेंगे बॉडी को, माइंड को, सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए करो, तो आप कहते हैं ये प्रवृत्ति है, परस्यूट है। और अगर आत्मा के लिए करो आप कहते हैं निवृत्ति मार्ग है, विड्रॉल पाथ है। ये क्या मतलब है? क्योंकि आत्मा को सेटिस्फाई तभी आप कर सकते हैं जब आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से अपने आप को विड्रॉ करें। अंटिल अनलेस आप बाहरी दुनिया से अपने आप को विड्रॉ नहीं करते तो आपके अंदर एक जर्निंग नहीं होगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप 100% बाहरी दुनिया से अपने आप को विड्रॉ करेंगे तभी आप अंदर की जर्निंग कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। जितना आप बाहरी दुनिया से विड्रॉ करेंगे उतनी जर्निंग अंदर की होगी, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। तो आप कहेंगे इसकी जरूरत क्या है कि हम अंदर क्यों जाएं? हम अंदर जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है, हमें लाइफ में प्रवृत्ति भी चाहिए, मतलब मैटेरियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व होना भी हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें जिंदा रहना है। वी हैव ए लाइफ, वी नीड दैट प्रवृत्ति। पर निवृत्ति क्या ये जरूरी है या जिस इंडिविजुअल विशेष है ना, ये भी जरूरी है। क्यों? हमें मरना भी है। जब मरना ही पक्का है, मरना मतलब सबको छोड़ना है। अगर सडनली आप मरोगे तो इतना जो आपने अंपायर खड़ा कर रखा है साम्राज्य, और आपको पता चले कि 15 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में आप मरने वाले हो, तो वो बड़ा शॉकिंग है, दर्दनाक है। ये मैंने पूरी जिंदगी इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, अब मैं इन सबको छोड़ के जाऊंगा, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, कुछ नहीं पता, तो कमाया क्यों था? तो उसकी तैयारी करनी जरूरी है कि मरना तो है। तो अगर मरोगे, मरने का मतलब जब सब चीजें तुमसे छूटेगा, वो जबरदस्ती छूटा जाएगा। क्यों तुम ऐसा हालत बनाते हो अपना कि जबरदस्ती तुमसे छीन लिया जाए? तुम ऐसा क्यों नहीं अपने लाइफस्टाइल को बनाते हो कि तुम खुद धीरे धीरे इन चीजों को छोड़ो, और जब मौत क्लोज हो आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो कि नाउ आई एम रेडी टू मूव फॉर अनदर नेक्स्ट जॉइनिंग। ये जो सांसारिक चीजों को छोड़ने की तैयारी, वो भी जरूरी है। हम धोखा कहां खाते हैं? हम सबके सब ये जानते तो हैं कि हम मरेंगे, पर हम इसको अंदर से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। 90 साल के एज में भी, 100 साल की एज में भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये भाव बना रहता है शायद मैं ना मरूं, शायद मैं बीमार ना पड़ूं, ये शायद लगा लगा करके दुनिया से चिपक कर बैठे होते हैं। वो दुनिया में फैमिली भी है, धन भी है, नाम भी है, जो कुछ भी है। नहीं तो 80-90 साल के लोग पोस्ट पाने के लिए क्यों तड़पते हैं, नाम अप्रिशिएशन पाने के लिए क्यों तड़पते हैं, बच्चे हमें पूछते नहीं पूछते उसके लिए रोना धोना क्यों शुरू करते हैं, मेरे धन संपत्ति कितना है ये बखानते क्यों फिरते हैं, किस बात के लिए करते हैं। और जबकि पता ही नहीं अभी अगले महीने, अगले साल, अगले 2 साल में, अगले 5 दिन में कभी भी जा सकते हो। ऐसे व्यक्ति अंदर से ज्यादा टूटे हुए, बिखरे हुए, दुखी होंगे। इसीलिए निवृत्ति उतना ही नेचुरल है जितना प्रवृत्ति। मैटेरियल वर्ल्ड्स को एंजॉय करना उतना जरूरी है जितना उससे धीरे धीरे अपने हटाने की तैयारी करना। इसी को निवृत्ति कहते हैं। तो हमारे सारे शास्त्रों में इन दोनों साइड को जोर दिया गया है। हमारे शास्त्रों का मानना है अगर आप सिर्फ मैटेरियल लाइफ के पीछे पड़े हो तो भी आप अंधेरे में गिरने वाले हो, दुखी होने वाले हो। जो लोग केवल स्पिरिचुअल लाइफ के पीछे पड़े रहते हैं वो भी दुखी और परेशान होते हैं, उनसे ज्यादा होते हैं। ईशोपनिषद में इसको विद्या और अविद्या कहा, मैटेरियल परस्यू और स्पिरिचुअल परस्यू। जिसको आप स्पिरिचुअल परस्यू कहते हैं उसी को निवृत्ति कहते हैं। जब तक आप मैटेरियल वर्ल्ड से अपने आप को विड्रॉ नहीं करोगे, अपने मन को हटाओगे नहीं, अपने इंद्रियों को हटाओगे नहीं, तब तुम्हारे स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा हो नहीं सकती। उसी को दूसरे उपनिषदों में, कठोपनिषद में श्रेय और प्रेय कहता है। इसी को मुंडक उपनिषद में पराविद्या अपराविद्या कहता है। इसी को महर्षि कणाद वैशेषिक में निश्रेयस और अभ्युदय कहते हैं। मतलब हमारे पूरी जो सनातन धर्म की शास्त्र परंपरा दोनों को रेस्पेक्ट करता है। आप मैटेरियल लाइफ में भी जाओ और स्पिरिचुअल लाइफ में भी जाओ, मैटेरियल वर्ल्ड में जाने का एक समय फिक्स रखो, उसके बाद स्पिरिचुअल लाइफ में जाना, उनको छोड़ देना। गृहस्थ जीवन उस मैटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने का एक स्टेज ऑफ लाइफ है। इसीलिए ऋषियों ने और मुनियों ने हमारे लाइफ को 4 स्टेजेस में बांटा। वो 4 स्टेजेस में बांटने का उद्देश्य क्या था कि आप संसार की हर सुख को भोग सको। ब्रह्मचर्य आश्रम तुम्हारे लाइफ का पहला 20-25 साल है जहां तुम भोगोगे कुछ नहीं पर अपने आप को तैयारी करोगे। दिस इज ए प्रिपेरेटरी स्टेज जहां आप अपनी तैयारी करोगे, स्किल डेवलप करोगे, ज्ञान डेवलप करोगे, फिजिकली मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे, जिसके लिए आप खेल कूद योग व्यायाम वगैरह करते हैं, पढ़ना लिखना, अपने आप को एजुकेटेड करना है और स्किल डेवलप करना है। जब ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हो जाए तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो विवाह संस्कार के द्वारा। अच्छा, ब्रह्मचर्य आश्रम कैसे आप प्रवेश करोगे, क्योंकि हम संस्कारों की बात कर रहे हैं, उपनयन संस्कार के माध्यम से आप ब्रह्मचर्य आश्रम स्टूडेंट लाइफ में प्रवेश करते हो, स्किल डेवलप करना और ज्ञान बढ़ाना। उसके बाद विवाह संस्कार के द्वारा आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, क्यों, मैटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने के लिए, प्रवृत्ति मार्ग के लिए। और जब आपको आपके लाइफ का जो मेन पीरियड है, जो जवानी है, जिसमें शरीर मन और इंद्रियां आपके इतने स्ट्रांग है कि मैटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय भी कर सकते हो, उसके लिए एफर्ट्स भी कर सकते हो। जब आप दुनिया को एंजॉय कर लिया, अब धीरे धीरे उससे हटने की कोशिश करो। अगेन अनदर प्रिपेरेटरी स्टेज, दैट इज कॉल्ड वानप्रस्थ आश्रम। एक तैयारी का और स्टेज आ गया वानप्रस्थ, जहां आप धीरे धीरे अटैचमेंट छोड़ो, फैमिली अटैचमेंट छोड़ के सोशियल अटैचमेंट करो, मतलब छोटे से बड़े की ओर यात्रा करो और सांसारिक चीजों से मन को हटाने की कोशिश करो, यहाँ एब्सोल्युटली आप छोड़ नहीं सकते हो। आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगेगा एक 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 दूसरे तरह की लाइफस्टाइल जीने के लिए। फिर आपका जो लास्ट बुढ़ापा होगी, जिसमें आप बहुत सारे चीजों में आप अपने आप को इनकैपेबल फील करोगे, उस समय आप अपने आप को मेंटली फिजिकली वानप्रस्थ आश्रम में इतना तैयार करो कि सन्यास आश्रम में प्रभु की भक्ति और अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन में इतना लगाओ कि दुनिया से आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। तो आप संसार को भी भोग सकते हो और संसार के बाहर की दुनिया को भी भोग सकते हो। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, ये शतपथ ब्राह्मण को मैं कोट कर रहा हूं, ब्रह्मचर्याश्रमम समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रब्रजेत। कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में जाओ स्टूडेंट लाइफ में, जब वो पूरा हो जाए तो हाउस होल्डर्स लाइफ गृहस्थी जीवन में जाओ विवाह संस्कार के द्वारा, और जो गृहस्थी जीवन को एंजॉय कर लिया तो फिर अब वानप्रस्थ आश्रम में जाओ संस्कार के द्वारा, और वानप्रस्थ संस्कार लाइफ, वानप्रस्थ लाइफ को जीने के बाद संन्यास बन के सब कुछ छोड़ दो। तो ये चार आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य यही था कि जीवन में कभी आपको पछतावा ना पड़े कि अच्छा ये मैंने नहीं कर पाया, ये मैंने नहीं कर पाया, ये मैंने भोग नहीं पाया। मरते समय ये अफसोस ना हो कि मैंने जिंदगी में तो इतना साम्राज्य इकट्ठा किया, इतना पैसा इकट्ठा किया, इतना नाम इकट्ठा किया, मेडिकल में पढ़ा हुआ हूं, मरने के स्टेज पर कोई पूछने वाला नहीं है। जवानी में तो मेरा नाम इतने अखबारों में आता था, मीडिया में आता था, मेरे घर में इतने सारे अवार्ड रिवार्ड्स भी पड़े हुए हैं, हर कोई मुझे पूछता था, अब कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने करोड़ों अरबों कमाया, इतने बड़े बड़े घर बनाया, इतना पैसा बैंक बैलेंस में रखा, अब वो मेरे काम में नहीं आ रहे। मैं डॉक्टर को करोड़ों देने को तैयार हूं पर वो मुझे ठीक नहीं कर पा रहा है, मेरा मरना निश्चित है। तो ऐसा पछतावा ना हो कि जो मैंने कमाया अब वो मेरे काम में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम में एक दूसरे लाइफ की कमाना होता है। मरते समय आप कैसे मरे उसकी तैयारी वानप्रस्थ आश्रम में शुरू हो जाती है, जहां आप धीरे धीरे गृहस्थ जीवन से अपने आप को अलग करते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं, अपने अगले जीवन की तैयारियां करते हैं। आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगला सवाल आपके मन में उठेगा, ये वानप्रस्थ आश्रम में कब जाएं? मैं जब वानप्रस्थ आश्रम कहता हूं तो आपको थोड़ा हेवी वर्ड लगता होगा, आपकी भाषा में सिंपल भाषा में कहूं रिटायर्ड लाइफ, मैं रिटायरमेंट कब लूं? जब नॉर्मली हम बात करते हैं रिटायरमेंट कब लूं, इसका मतलब होता है जॉब से कब रिटायरमेंट लूं। पर सनातन धर्म में जब रिटायरमेंट की बात होती है वो जॉब से नहीं, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी से कब रिटायरमेंट लूं। फैमिली ही क्यों? क्योंकि तुम्हारा और मेरा सारा अटैचमेंट फैमिली में ही। मैं बुरा करूं क्यों कर रहे हो जी? फैमिली के लिए। अच्छा करूं क्यों कर रहे हो? फैमिली के लिए। सब फैमिली के नाम पर हम सब कुछ ठेका सब घड़ा फोड़ देते हैं। तो फैमिली से डिटैच होने से तुम फैमिली के एक्सक्यूज बना करके जो जो काम अच्छा बुरा करते थे उससे तुम अपने आप को हटा सकते हो। तो रिटायरमेंट का मतलब तुम फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी से कब छुटकारा लोगे, वानप्रस्थ आश्रम में जाओगे? तो उसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं, जब तुम्हारा स्किन ढीला पड़ने लगे, बाल पकने लगे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे होने लगे, शास्त्र की भाषा में कहें, गृहस्थस्तु यदा पश्य वली पलितमात्मनः अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत। मनुस्मृति लिखते हैं, मनुस्मृति में मनु लिखते हैं, जब हाउस होल्डर गृहस्थ व्यक्ति देखे कि उसका शरीर ढीला पड़ रहा है, बाल पकना और चर्म ढीला होने का को लिटरेरी मत लीजिए। वह आजकल तो 10-12 साल का बच्चा का भी बाल पकने लग जाता है, और स्किन तो जितना हम आजकल वो बहुत सारे जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, तेल नहीं लगाते हैं, बहुत ज्यादा हम ये केमिकल्स यूज करते हैं, तो स्किन भी बहुत जल्दी ढीले पड़ने लग जाते हैं। तो बात स्किन का ढीला पड़ना या बाल पकने की नहीं, उस समय लोग नेचुरल ऑर्गेनिक रहते थे तो सही समय पर बाल पकता था, सही समय पर स्किन ढीले होते थे। मतलब जब तुम्हें बुढ़ापा का फील होने लगे, जब तुम्हें ये फील होने लगे कि अब मैं बुढ़ा होता जा रहा हूं, मेरा शरीर अब पहले की तरह अब इतना स्ट्रांग नहीं है, मेरा मेमोरी मेरी इंटेलेक्ट अब पहले की तरह इतना स्ट्रांग नहीं है, तो समझ लेना कि बुढ़ापा की पैर पड़ने लग गया है, वो जब भी लगे आपको। और नंबर टू, जब तुम्हारे अपत्य के अपत्य हो जाए, तुम्हारे बच्चों के बच्चे होने लग जाए, मतलब जब तुम दादा दादी या नाना नानी बन जाओ। इसका क्या मतलब है दादा दादी नाना नानी बनते ही क्यों आप कहते हो कि भाई सब छोड़ छाड़ दो? नहीं, छोड़ने का मतलब है, इसका मतलब है कि तुम्हारे बच्चे अब लायक हो चुके हैं। वो अगर विवाह करके बच्चे वाले बन चुके हैं, उनके पास दो चीजें हैं। पहली चीज है कि आप वो सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं, अपना परिवार बच्चा अपने लाइफ का ख्याल रख सकते हैं, उनका एज भी इतना हो चुका है और उनका स्किल भी उतना हो चुका है। पहली चीज आपकी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब आपको आपका हर वो चीजें जो माँ बाप के नाते आप कर रहे थे, उनके लिए अब वो इंटरफेरेंस लगने लगा है कि आप उनके लाइफ में जबरदस्ती दखल देने लगे हैं। अब आपकी टोकना उनको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका अननेसेसरी एडवाइसेस उनको बहुत इरिटेटिंग लग रहा है, आपका वहां होना और स्टेयर करना, ये कहां जा रहा है कहां आ रहा है, ये सब देखना उनके लिए बड़ा अननोइंग हो रहा है। बच्चों के लिए जो आपकी ड्यूटी थी पूरी हो चुकी है, सिग्नल मिल चुका है, वो आप खुद शादीशुदा बच्चे वाले हो चुके हैं, उनको फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ जीने का उतना ही राइट है, जहां आपका जीरो रोल होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में चल जाना चाहिए। वो 50 साल हो सकता है, 55 हो सकता है, 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, जैसी हर घर की अपनी अपनी सिचुएशन है। आपके बच्चे जब लायक हो जाएं, अपने पैर पर खड़ा हो जाएं, अपना परिवार बना जाएं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त हो चुकी है। इसके बाद अगर आप जबरदस्ती उनके लाइफ में घुसे रहते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, वो तो हम आज चर्चा करेंगे। पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो भी जानेंगे, खाली पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी जानेंगे। इसीलिए यही समय है वानप्रस्थ आश्रम में जाने का। जब वानप्रस्थ आश्रम जाना का मतलब क्या है, इट्स ए फेज ऑफ ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन का एक फेज है, और वो क्या फेज है कि अब आप अपने फ्यूचर जनरेशन को पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दीजिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने करने दीजिए, उनको अपनी लाइफ जीने दीजिए, उनको अपनी गलतियां करने दीजिए। जब तक आप उनको गलतियां करने नहीं देंगे, वो उस ठीक नहीं हो सकते। आपकी जिम्मेदारियां अब खत्म हो जानी चाहिए। मॉडर्न एज की जो प्रॉब्लम है रिटायरमेंट की, यहीं से शुरू होती है। एक बार हम शादीशुदा करके घर गृहस्थी लाइफ में घुस गए। अच्छा, एक मजेदार बात है, ज्यादातर लोग शादी से पहले बड़े अपने आप को सोशल बहुत केयरलेस, दुनिया में क्या रखा है, बड़े लंबी लंबी कम्युनिस्ट टाइप के प्रोग्रेसिव स्पीच देते रहते हैं। जैसे ही शादी हो जाती है थोड़ी दिन तक भी फ्रेंड्स वो काफी रहता है। धीरे धीरे ऐसे फैमिली में घुसते जाते हैं, दुनिया इतनी छोटी बना देते हैं, ये तो भूल जाइए कि कोई दोस्त है, मित्र है, दुनिया में और भी सोसाइटी है। अपने फैमिली में भी रिश्तेदार माँ बाप उनको भी भूल जाते हैं, मैं, मेरी पत्नी, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, बस हम दो, हमारे दो की दुनिया में इतने घुस जाते हैं, लगता है सारी दुनिया अब कहीं है नहीं, अगर है तो हमारे लिए है, मतलब हम हमारे अच्छे के लिए करें, बाकी तो जो है हम ही चार हैं, हम दो, हमारे दो, अब दो नहीं तो तीन, तीन नहीं तो चार, जितने भी हैं, जिनके दो से ज्यादा या कम है बुरा नहीं मानना, मैंने जस्ट एक कहावत कहा, पांच भी हो सकते हैं, इट्स अप टू यू। और ऐसा फैमिली में फंसते 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 80-90 साल तक एज में भी हम बाहर निकल नहीं पाते। वो आपने महाभारत में सुना है ना अभिमन्यु की कहानी, उसको चक्रव्यूह में वो जो आर्मी फॉर्मेशन है, जो अलग अलग तरह के आर्मी फॉर्मेशन होते हैं, तो उसको चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, वो घुस गया, बाहर निकल नहीं पाया, मरते तक उस व्यूह में पड़ा रहा, बाहर निकल नहीं पाया। हम सबके साथ, मैं स्पेशली इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूं, वेस्टर्न सोसाइटी की बात हम नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्या, उनकी अच्छाइयां बुराइयां अलग है, वो एक अलग तरह के लाइफस्टाइल में, उनमें कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हमारा पूरा का पूरा टॉपिक इंडियन सोसाइटी पर है, इंडियन कम्युनिटी के लोगों के ऊपर है। हम उस अभिमन्यु की तरह एक बार चक्रव्यूह में घुसते हैं ना, फिर निकल नहीं पाते हैं, वही मर जाते हैं, सड़के मर जाएंगे, बच्चे पूछे न पूछे उनके गुलामी कर करके मर जाएंगे, पर हम उस गृहस्थी जीवन के से बाहर निकल नहीं पाते पूरी जिंदगी। मैंने तो देखा ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब वो चाहते हैं बच्चा अगर कहे पापा बैठ जाओ तो वो खुशी खुशी बैठ जाते, खड़े हो जाओ खड़े हो जाए, अभी स्ट्रांग है, फिजिकल स्ट्रांग है, मानो बच्चों बच्चा ही दुनिया का उनके लिए सब कुछ है और कोई कुछ नहीं, प्रैक्टिकली उनके बच्चे ही उनके लिए भगवान है, उनके बच्चे ही उनके लिए प्रेसिडेंट है, उनके बच्चे ही सब कुछ है, बच्चे अगर लाल पहने तो दुनिया लाल है, बच्चे अगर नीला पहने तो नीला है। ये जो जो दासता, ये जो चक्रव्यूह में अभिमन्यु के तरह फंस जाते हैं फिर बाहर नहीं निकल पाते, उससे होता क्या है, ओल्ड एज में जब आप 50 के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, मतलब जब आप फिजिकली ठीक ठाक हैं, अपना काम खुद कर लेते हैं, आना जाना कर लेते हैं, तब तक तो ठीक है, पर आयु के लाइफ का जो लास्ट पीरियड होते हैं, जहां आपके अंदर अब चलने फिरने के भी इतनी सामर्थ्य नहीं है, खुद का काम बहुत ज्यादा करने की सामर्थ्य नहीं है, तो ओल्ड एज के प्रॉब्लम्स जो आते हैं, लोनलीनेस, बोरिंग, सेल्फ एस्टीम कम होने लगता है, सेल्फ रेस्पेक्ट जीरो होने लगता है, बच्चों के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट होने लगते हैं, और यहां से शुरू होता है इस मॉडर्न एज का प्रॉब्लम, एंड दैट इज कॉल्ड मिसट्रीटमेंट ऑफ एल्डर्स। बुढ़ापा में बुजुर्ग लोगों के साथ जो बदतमीजियां होती हैं, आप में से बहुत सारे लोग बड़े भाग्यवान होंगे, आप एक अलग सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी के बहुत सारे चीजों को आपने अडॉप्ट किया है, कि बच्चे पहले से ही, आप चाहें न चाहें आपके बच्चे वैसे ही आपको वानप्रस्थी बना देते हैं, जैसे ही कॉलेज जाने लगते हैं तो वैसे ही आपको आधा वानप्रस्थी बना देते हैं, आप रोते रो, खुशी रहो, जो भी हो, बच्चे वैसे ही अलग हो जाते हैं। पर सोचिए जो भारत में रहते हैं, जब आप साथ रहने के लिए मजबूर होते हैं या बच्चों के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, दुनिया में आपने कुछ और कल्टीवेट नहीं किया सिवाय फैमिली पैसा और कुछ कल्टीवेट नहीं किया। यहीं से एल्डर्स के प्रति मिसट्रीटमेंट शुरू होता है और इतना भयानक है, बुजुर्गों के साथ फैमिली मेंबर्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा और आसपास लोगों के द्वारा जिस तरह का मिसट्रीटमेंट या अब्यूसिंग होता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए जून 15 को वर्ल्ड एल्डर्स अब्यूस अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। बहुत सारे लोग ऑस्ट्रिच की तरह होते हैं, ऑस्ट्रिच समझते हैं शुतुरमुर्ग, मुंह को रेत के अंदर घुसा देते हैं, उनको लगता है तूफान नहीं आता, क्योंकि उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, उनके बच्चे अच्छे हैं, तो कहेंगे ये सब चीजें ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आप भाग्यवान हो, आपके साथ ऐसा नहीं होता, पर करोड़ों नहीं अरबों लोग अपने घर में अपने बच्चों के द्वारा अब्यूस्ड होते हैं, मिसट्रीटेड होते हैं, उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं मिलता, वो सेल्फ एस्टीम उनका लो लेवल पर जा चुका है और अकेले जीने के लिए मजबूर है। दुनिया में कभी कभी सालों में भी कोई एक आदमी मिल जाए जो दो चार बात करने के लिए। इसका कारण क्या है? कारण वानप्रस्थ आश्रम की तैयारी ठीक से नहीं हुई, जिसके जो 50-60 साल में जो आपको तैयारी करनी थी कि 80-90 साल के बाद या जब भी आप फिजिकली मेंटली डिसेबल हो आपका लाइफस्टाइल कैसी होगी, वो तैयारी नहीं की, उसका रिजल्ट ये होता है। माँ और पिता दोनों विवाहित संतानों के साथ घर में जो कोल्ड वार चलता रहता है, ईगो का प्रॉब्लम, जब बहू पहली बार घर में आती है, वो इंडियन सोसाइटी में तो लड़की चले जाती है अपने दामाद के घर तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, तो बेटा बहुओं के साथ ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बहू घर में आती है, बेटा शादी हो चुका है, बच्चे हो चुका है, पर पापा अभी तैयार नहीं है अपनी जिम्मे पावर छोड़ने के लिए, वो अभी भी जाते आज बेटे को टोकते हैं, बहू को टोकते हैं, पोतों पर अपनी हक जमाने की कोशिश करते हैं। माँ की अपनी समस्या है, अभी तक वो घर की मालकिन थी, अपने हिसाब से मैनेज करती थी, अब एक नई लड़की आ गई बहू के रूप में, अब वो मैनेज करती है, उसकी स्टाइल अलग है, वो आपसे बिल्कुल अलग है, आपसे अलग उसकी पढ़ाई लिखाई है, आपसे अलग उसकी अपब्रिंगिंग है, आपसे अलग उसकी सोच है, वो अपने ढंग से अपने घर को मैनेज करती है, सास को वो बर्दाश्त नहीं है, नए तरह से घर को मैनेज करना, नए तरह से फैमिली के रूटीन बनना वो बर्दाश्त नहीं है, तो फिर एक कोल्ड वार चलता रहता है, कहीं कहीं डायरेक्ट वार भी चलता है, मोस्ट ऑफ जगह कोल्ड वार चलता रहता है। और मुझे पता है इवन यहां भी जो लोग भारत से आकर के यहाँ सेटल हो गए और अपने माँ बाप को अपने साथ ले आए हैं, यहाँ रहने पर भी उनके आपस में अब वो इंडिया के तरह डायरेक्ट वार तो फेस टू फेस वार तो अब कम होता है यहाँ आने के बाद, पर यहाँ कोल्ड वार चलता रहता है, सास के साथ बहू, 50-50, 60-60 साल के बहुएं, उनके लाइफ मिजरेबल है क्योंकि उनके 70-80 साल के सासें घर में रह करके यहाँ आकर भी कैसे चीजों में डिक्टिक करते हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना इंटरफेरेंस करते हैं। 50-60 साल की लेडीज आज भी रोती रहती है, मेरे पास भी आते हैं, कितना उनके लाइफ में दुख है, उनके सासों के कारण सास कितना मिजरेबल बना रखते हैं, मतलब उनको 60 साल हो चुका है, उनके बच्चे शादी करने हो चुके हैं, अभी भी उस महिला को फ्रीडम नहीं है कि वो अपने मर्जी से घर चला सके क्योंकि घर में बुढ़ी सास बैठी हुई है। ऐसी सासों की, ससुर की, माँ बाप की आगे क्या हालत होगा? मिस्ट्रीट होगा ही होगा, क्योंकि जब आपने अपने हाथ से अपना रिस्पेक्ट खोया है, अपने हाथ से एम्पैथी पाना खोया है, अपने हाथ से सिंपैथी पाना खोया है, आपने बहुओं को आजादी नहीं दी, बहुओं को अपने हिसाब से जीने के लिए अधिकार नहीं दिया, जब आप डिसेबल हो गए वो क्यों आपके प्रति मेंटल फिजिकल अफेक्शन रखेंगे? तो ये जो पावर की लड़ाई है, ये जो माँ बाप की बच्चों की जीवन में लड़ाइयां है, ये क्यों होता है? क्योंकि हम रिटायरमेंट, जब बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं, वो शादीशुदा हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है कि हम अपने लाइफ को कैसे जिएं, क्योंकि आसपास कुछ है नहीं। या तो पति अपनी पत्नी के काम में इंटरफेयर करती है, या पत्नी पति के काम में इंटरफेयर करती है, या दोनों मिलके बच्चों के लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। ऐसा भी लाखों करोड़ों माँ बाप हैं जो बच्चे उनसे दूर रहते हैं, पर रोज दिन में 50 बार फोन करके उनको हर चीज में डिक्टेट करते रहते हैं, ये नहीं तो ऐसा करो, ये नहीं तो ऐसा करो। बच्चे कभी कभी माँ बाप की रेस्पेक्ट करने के कारण मजबूरन, ये जो अंडरलाइनिंग है ना, मजबूर कंपल्शन के कारण करते रहते हैं, रेस्पेक्ट के कारण, पर अंदर से वो अफेक्शन कम होता जाता है। यहीं से पैदा होता है बुढ़ापा में परेशानियां, फिर वो बेटा बहू या बेटी और दामाद, उनके अंदर अब ना वो पेशेंस बचा है, ना वो रेस्पेक्ट बचा है, जो 15-20 साल से आपने उनके साथ नोइंगली अननोइंगली किया कि आपके बुढ़ापा में वो आपके साथ दे पाए। अगर उसके बावजूद भी कोई देता है, वो उनका बड़प्पन है, माँ बाप का नहीं। तो प्रॉब्लम कहां है कि बच्चे बड़े होने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, यहीं से शुरू होता है। सनातन धर्म के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया वानप्रस्थ आश्रम। तो आप कहेंगे ये बार बार, चलो ठीक है वानप्रस्थ आश्रम आप बोल रहे हो, आपने बताया बच्चे जब बड़े हो जाए तो हमारा जो बिहेवियर है, नोइंगली अननोइंगली, हम तो उनका भला चाहने के लिए करते थे, पर आप कह रहे हो कि उनको बुरा लग रहा है, तो फिर हम करें तो क्या करें? तो हमारे शास्त्र एडवाइस करते हैं, मेरे बोलने से ज्यादा फायदा नहीं है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, आपको क्या करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं कुछ नहीं। वानप्रस्थ का तो थोड़ा मैं मॉडर्न एज के वानप्रस्थ की ओर आने से पहले थोड़े वानप्रस्थ की रियल भाव समझा दूं। वानप्रस्थ का अर्थ होता है, लिटररी मीनिंग होता है, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, रिस्पॉन्सिबल हो जाएं और आप बुढ़ापा की फर्स्ट स्टेप पर पहुंचने लग जाएं, तो आप जंगल की ओर चले जाएं। तो आप कहेंगे आजकल हम कौन सा जंगल जाएंगे? पहले भी लोग जंगल नहीं जाते थे। जंगल जाने का अर्थ है, पहले वानप्रस्थ क्या है वो समझने की जरूरत है। प्राचीन काल में वन या जंगल या फॉरेस्ट और जो ह्यूमन हैबिटेट गांव या शहर, ये दोनों अलग अलग नहीं होते थे। आपको जंगल देखने के लिए बच्चों को गाड़ी में लेकर के 50 माइल 100 माइल 500 माइल 1000 माइल जाना नहीं पड़ता था। जंगल और हैबिटेट साथ साथ होते थे। जंगल में ही एक एरिया गांव है, शहर है, और शहर की जो पेरिफेरी वहीं से जंगल शुरू होता है। तो आप ह्यूमन हैबिटेट से अपने आप को अलग कर देना, क्योंकि उससे आपको प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे कि आप मनुष्यों की आपके लाइफ में काम रोल रहे। तो आप गांव के बाहर अपना एक छोटा सा कुटिया या झोपड़ी बना के वानप्रस्थी रहता था। मैं प्राचीन काल की बात कर रहा हूं, फिर मैं कंटेम्प्रेरी क्या यूज है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिससे कि उसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज है कि आप दूसरे ह्यूमन बींग से कम मिलने की प्रैक्टिस करें, जिससे कि बुढ़ापा में लोनलीनेस आपको ज्यादा चुभे नहीं, अभी से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर आपका रोज प्रतिदिन आप गांव में आते हैं, शहर में आते हैं, सोशल सर्विस करना है, बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना है या सोशल सर्विस करना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना है, धर्म की शिक्षा देना है, ईश्वर भक्ति कर लाना है, ये सब चीजें जो सोशल सर्विस करने के लिए आप आते हैं, पर रहते हैं आपका हैबिटेट अब उनसे दूर हो गया, यही वानप्रस्थ है। आज के एज में ये तो संभव नहीं है, हो सकता है जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास संभव हो। अब जैसे वेस्टर्न सोसाइटी में, अमेरिकन सोसाइटी में बच्चे वैसे ही जब कॉलेज जाने लगते हैं वो अलग चले जाते हैं, बच्चे भी बड़े कैपेबल है, वो अपना घर बना सकते हैं, माँ बाप भी बड़े कैपेबल हैं, उन फाइनेंशियली एस्टेब्लिश्ड हैं, उनका घर हो सकता है। पर सबके साथ तो ये नहीं हो सकता, जो गरीब है, जो दो घर नहीं बना सकते, जंगल जाकर क्या करेंगे, जंगल है ही कहां। और भारत में जहां एक ही घर में दस दस पांच पांच बीस बीस लोग रहते हैं, घर की कमी है, जगह की कमी है, और भारत के जो बड़े बड़े शहरों में एक एक फ्लैट में छोटे छोटे कुटिया सॉरी डब्बा जैसे घरों में कितने लोग भरे रहते हैं, वो कहां जाएंगे। ये मॉडर्न एज की प्रॉब्लम है। तो करना फिर क्या है, आपको कहीं छोड़ के जंगल जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या करने की जरूरत है, चेंज योर एटीट्यूड। कल तक जो आप सांसारिक चीजों में अपने आप को घुसा रखा था, फैमिली मैटर में पूरी तरह आपने डुबा रखा था, अब वॉलेंटरीली इच्छा से स्वेच्छा से उन चीजों से अपने आप को हटाइए, एटीट्यूड चेंज करिए। कल तक आप नए कपड़े रोज रोज नए कपड़े पहनने का शौक था, आप जो पुराने कपड़े हैं उन्हीं में से चलाइए। पहले आपको नाम की बड़ी इच्छा थी, लोग आपको माने रेस्पेक्ट करे, एटीट्यूड चेंज करिए, मुझे किसी की कोई अप्रिशिएशन रेस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। कल तक आप फैमिली में फैमिली के अंदर हर चीज में डोमिनेट करते थे, आपकी चलती थी क्योंकि आप बड़े थे, आपके बच्चे छोटे थे, और आज बच्चों को अपने हिसाब से जीने दीजिए। आप पति पत्नी अपने लाइफ में और कुछ रास्ता ढूंढिए अपने आप को बिजी रखने के लिए, एक घर में रहते हुए भी बच्चों के लाइफ से दूर रहिए, बच्चों के डिसीजन मेकिंग से दूर रहिए। आप कहेंगे हम क्या करेंगे, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब अपने लिए टाइम निकालिए, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, बहुत टाइम है, अब आपको काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बच्चों की देखभाल करने की जरूरत नहीं है, अब आप अपने इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपने गोल को फ्यूचर गोल को रीअसेस करिए कि मैंने क्या किया, क्या पाया, और आगे के जीवन मेरा कैसा होगा। और उसके लिए जरूरी है हमें कुछ बेसिक चीजें समझने की जरूरत है, कंसेप्ट की। तो वानप्रस्थ आश्रम एक फेज ऑफ ट्रांजिशन होगा, अब आप जवानी से, अब आप बुढ़ा नहीं हो गए हैं, ट्रांजिशन वानप्रस्थ मतलब आप 50 55 60 पर आप बुढ़ापा की और आपकी जर्निंग शुरू हो रही है, आप एक नए तरह के बॉडी माइंड के साथ जीने की मजबूर होंगे। इस फेज ऑफ ट्रांजिशन, इस फेज ऑफ ट्रांजिशन को स्मूथ बनाने के लिए आपको क्या करना है, वानप्रस्थ आश्रम में आपको ये यात्रा करनी है, इट्स ए जर्नी फ्रॉम मैटेरियल लाइफ टू स्पिरिचुअल लाइफ। अब मैटेरियल लाइफ को मिनिमाइज करिए, स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाइए, एंजॉयमेंट टू रिनुंसिएशन। अब अपने दुनिया को में सुख भोगने की जो इच्छा है उसको मिनिमाइज करिए, और त्याग की, मेंटल रिनाउंसमेंट की, रिनाउंसिएशन की प्रैक्टिस बढ़ाइए। अभी तक आपका मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरा यो, मेरा घर, मेरे जमीन, ये जो मेरी गाड़ी, ये अटैचमेंट था, अब धीरे धीरे उस अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर आइए, मेरे के जगह अब हमारा ले आइए। ये जहां कलेक्टिविटी हो, जहां बहुत लोगों के बीच में एक बनिए। कल तक आप फैमिली के लिए 100% फोकस थे, अब फैमिली से थोड़ा ब्रॉडर सेंस बनाइए, कम्युनिटी की ओर आइए, कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, समाज की भला करने में करिए, और इन सब के बीच में अपनी माइंड की सोच की जो नैरोनेस था उसको ब्रॉडनेस की ओर यात्रा करिए। नैरोनेस में मेरी फैमिली, मेरा परिवार, अब सारा संसार, सारे मनुष्य जाति, सारे पशु पक्षी प्राणी, आपके लिए हजारों काम है, आपके लिए हजारों काम करने के लिए है। कल तक आपके पास टाइम नहीं था, आज आपके पास बहुत टाइम है, बहुत रिसोर्सेस है, कल तक आपको दो बच्चे पालना था, आज दुनिया में करोड़ों लोग ऑर्फन हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, उनमें से कुछ बच्चों का आप एजुकेट करिए। कल तक आप अपने बैकयार्ड में काम करते थे, अब पूरा दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कुछ उसके लिए अवेयरनेस पैदा करिए, कुछ उसके लिए काम करिए। कल के लिए अपने घर के लिए पैसा कमाते थे, अब आजकल चैरिटी डोनेशन दूसरे जहां हजारों लाखों लोगों का भला हो सकता है ऐसा काम करिए। ब्रॉड सेंस जब तक नहीं बनेगा अब दूसरों का भला नहीं कर सकते। सो वानप्रस्थ आश्रम एक जॉइनिंग के रूप में लीजिए, मेटेरियल लाइफ से स्पिरिचुअलिटी की ओर, एंजॉयमेंट से रिनाउंसिएशन की ओर, अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर, फैमिली से कम्युनिटी की ओर, नैरोनेस से ब्रॉड सेंस ब्रॉडनेस की ओर। फिर क्या करें? मनुस्मृति कहता है कैसे करें ये सब, कहते स्वाध्याय नित्य युक्त दान्तो मैत्र समाहितः दाता नित्य मना दाता सर्वभूतानुकंपकः। मनुस्मृति कहता है अब आप रिटायर्ड लाइफ कैसे जिए, ध्यान से सुनिए, ये मेन टॉपिक है जो सबको सुनना है। मोस्ट ऑफ लोग हमारे यहां भी जो वानप्रस्थ के योग्य हैं, योग्य इसलिए कह रहा हूं वानप्रस्थ जीवन जीते नहीं जीते मुझे नहीं पता, पर वानप्रस्थ के लायक हैं, तो उनको लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा समय स्वाध्याय में लगाना चाहिए। स्वाध्याय समझते हैं, पढ़ने लिखने समझने। पहले भी आप कहेंगे पहले भी हमने खूब पढ़ा स्टूडेंट लाइफ में, तब पैसा कमाने के तरीका पढ़ रहे थे, प्रोफेशनल कौन से प्रोफेशन में जाएंगे उसके लिए पढ़ रहे थे, अब जो पढ़ेंगे अपने आप को समझने के लिए, लाइफ क्या है, संसार क्या है, दुनिया क्या है, मेरा क्या कनेक्शन है, मरना क्या है, पैदा होना क्या है, चीजों को समझने के लिए पढ़े। फिर नित्य युक्त अपने सेंसेस को इंद्रियों को अंडर कंट्रोल रखिए, लालच कम रखिए, भोगने की इच्छा पीने की इच्छा एंजॉय करने की इच्छा को कम करिए। दांत अपने माइंड को कंट्रोल रखिए। मैत्र अब सबके साथ मित्र भाव रखिए, फ्रेंडली बिहेवियर। मित्र भाव का अर्थ ये नहीं है कि नकली दांत दिखा करके हंस करके सबको हाय हेलो करना, नहीं, अंदर से ये फीलिंग पैदा करना, अंदर से ये सेंस पैदा करना, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखना, वो जो ईगो का प्रॉब्लम को दूर रखना है, वो पशु हो पक्षी हो इंसान हो छोटा हो बड़ा हो सबको समान दृष्टि से रखो, सबका भला करने की कोशिश करो, सब किसी का कुछ उपकार कर सकते हो तो उपकार करने की कोशिश करो, ये है मैत्र भाव, न कि आर्टिफिशियली दान दिखा करके दूसरों को अननेसेसरी आर्टिफिशियल ड्रामा करने की जरूरत है। और समाहित अपने माइंड को ट्रैंक्यूलिटी में लाने की कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए, योग की प्रैक्टिस करिए, मन को एकाग्र करने की कोशिश करिए। दाता देने की आदत डालिए, गृहस्थ आश्रम में हम बहुत ज्यादा लेते थे कमाते थे, अब आपकी जरूरतें मिनिमम है, बच्चों को देने के बच्चों के लिए ठीक है क्योंकि वैसे आप ना दें तो भी बच्चे खुश हैं, बच्चों को आपने इतनी एलिजिबल बना दिया वो अपने मेहनत से कमा सकते हैं, पर तब भी आपके अटैचमेंट क्योंकि अभी भी बच्चों से बहुत ज्यादा चिपका हुआ है, थोड़ा बहुत उनके लिए रखिए, कुछ परसेंटेज कर लीजिए, 50% में सोशल सर्विस या दूसरे अच्छे काम के लिए लगाऊंगा, 50% बच्चों के लिए रखूंगा, कुछ ऐसा करिए, दान देना शुरू करिए, चैरिटी करना शुरू करिए। और नित्यम अनादाता अब लेने की आदत छोड़ दीजिए, नाउ डोंट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट डोनेशन, किसी से कुछ मदद लेना फाइनेंशियल मदद लेना बंद करिए क्योंकि ये आपको फिर दोबारा उस फाइनेंस जो मनी का अट्रैक्शन होता है ना, जो धन का अट्रैक्शन है वो कभी नहीं मिटने वाला, अगर अभी भी लेने की प्रवृत्ति बना के रखेंगे फिर मरते दम तक भी आपको पैसे के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। तो लेना कम बंद कर लीजिए, देने की आदत बढ़ा दीजिए, अगर आपके पास नहीं है कमाते रहिए, जरूर मेहनत करिए कमाते रहिए, पर अननेसेसरी इकट्ठा करने की आदत छोड़ दीजिए। और सर्वभूतानुकंपक सभी प्राणियों के प्रति आप मर्सी काइंडनेस प्यार दया का भाव रखिए, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, 100% नहीं 70% 80% कोशिश करिए आपके द्वारा जाने अनजाने में मनुष्य नहीं, मनुष्य केवल मनुष्य नहीं, ये केवल मनुष्य तो हिपोक्रेट लोग बात करते हैं, कोई भी पशु पक्षी हो जाने अनजाने में उसको मेरे कारण कष्ट दुख ना हो, ये कल्टीवेशन शुरू करिए। जो पशु पक्षियों को खाया पिया अपना स्वाद के लिए लालच के लिए मारने के लिए हो गया गृहस्थ आश्रम, अब इनको छोड़ने की आदत डालिए, जीव पर कंट्रोल करिए, अब जीवों पर दया करिए, प्राणियों के ऊपर थोड़ा दया करिए। अब क्या है, अब मैं इसको थोड़ा अपनी भाषा में कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। जीवन भर आपने मेहनत किया, स्टूडेंट लाइफ में भी विद्यार्थी जीवन में भी बहुत संघर्ष किया, पढ़ने लिखने स्किल डेवलप करने, जवानी में भी संघर्ष किया, धन कमाना, सोसाइटी में अपने आप को एस्टैब्लिश करना, परिवार पालना, हो गया संघर्ष का जीवन। भगवान की कृपा से बच्चे आपके योग्य बन गए, अब आप रिलैक्स करिए, इसका सार निचोड़ बता रहा हूं। अब आप कुछ स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़िए, ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ाइए, धार्मिक सामाजिक सेवा कार्य में अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व करिए। जो बुढ़ापा में आइसोलेशन की प्रॉब्लम होता है ना, वानप्रस्थ में नहीं, रिटायर्ड लाइफ में आप आइसोलेशन में नहीं होते हैं, क्योंकि अभी भी आप गोल्फ खेलते हैं, आप वो वॉलीबॉल खेलते हैं, पार्टियों में जाते हैं। ये तब होता है जब आप 70, 80, 90 के करीब पहुंच जाते हैं, तब आइसोलेशन का होता है, तब आपको वो आइसोलेशन लोनलीनेस का फीलिंग नहीं होगा, अगर आप ईश्वर भक्ति में लीन हो। ये आपने 20-25 साल से अपने आप को तैयार कर रखा है अब मेंटली, कि आप ज्यादा से ज्यादा आप एंजॉय करते हैं ईश्वर भक्ति में। तो क्या होगा, आप अकेले भी पड़े हैं, आपको अकेलापन नहीं लगेगा, आप किसी दूसरे दुनिया में मस्त हैं, आपकी जो बोर्डम है, जो लॉस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट है, आत्मसम्मान की जो कमी है, ये जो लोअर्ड सेल्फ एस्टीम है, जो स्वाभिमान आपका बहुत डाउन हो चुका है, और जो बहुत बुढ़ापा के लिए जो प्रिपेयर्डनेस की जो लैक है, ये सब चीजें आपका दूर हो जाएगा जब आप शास्त्रों को पढ़ते हैं, अपने आप को इन्फॉर्म्ड करते हैं, सामाजिक सेवा ईश्वर भक्ति करते हैं, वो अपने आप कम होता है। अपने आप कैसे कम होता है, जब आप शास्त्रों को पढ़ते लिखते हैं, लाइफ क्या है, संसार क्या है, क्या कनेक्शन है, मनुष्य क्या है, इन चीजों को आप अच्छी तरह जानते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है आपको ओल्ड एज में हेल्प करेगा कि दुनिया कितना इल्यूजनरी है, दुनिया कितना टेम्पररी है, लाइफ कैसा है। बहुत सारे लोग जो अंदर से टूटे हुए होते हैं छोटी छोटी समस्या में, लोनलीनेस में, इसलिए कि उनको ये एजुकेशन नहीं, उनको ये समझ नहीं है कि जीवन क्या है, लाइफ क्या है। ईश्वर भक्ति भी आपको हेल्प करता है, और जब आप सोशल सर्विस करते हैं तो डेफिनेटली उसका बाय डिफॉल्ट, आप चाहें ना चाहें, लोगों की आपके प्रति प्रेम भाव रहता है, दूसरे लोगों का आपके प्रति सम्मान भाव बना रहता है। हो सकता है आज आपके बच्चे आपको रेस्पेक्ट ना करें, बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त हों, तो पर आप इस वानप्रस्थ आश्रम में ऐसे हजारों लाखों बच्चे, हजारों लाखों लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर दिया, जहां आपका एक दूसरा फैमिली बन गया। हो सकता है आपके बच्चे आपके बर्थडे में ना आए, पर आपके आसपास के ऐसे सैकड़ों लोग आने को तैयार होंगे अगर आपने उनके लिए कुछ किया हो, और वो वानप्रस्थ में आप कर सकते हैं। 70, 80, 90 साल में भी आपको सोशियल अप्रिसिएशन मिलेगा अगर सोसाइटी में कुछ इन्वेस्ट किया हो, जेन्युइन इन्वेस्ट किया हो, कहीं किसी सोसाइटी में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन गए पॉलिटिकल पावर के लिए नहीं, अगर आपने जेन्युइनली कहीं सेवा की हो, किसी का भला किया हो, किसी को उपकार किया हो, अगर 50 लोगों का किया हो तो 10 लोग आपको याद जरूर करेंगे, वो आपकी संपत्ति बनेंगी मरने से पहले तक भी। और अगर ईश्वर भक्ति किया है तो अंदर से आप इतना स्ट्रांग बनेंगे, आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए ये बुढ़ापा की तैयारी है, ये अकेलापन से जूझने की तैयारी है, वो डिप्रेशन को जूझने की तैयारी है वानप्रस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ आश्रम को अगर सही ढंग से हम तैयार कर पाए, अगर हमने अपने वानप्रस्थ आश्रम को अच्छे ढंग से जीने सीख लिया, वानप्रस्थ को सही ढंग से यूज किया, हमारा जो अगला बुढ़ापा है वो भी आसान होगा। तो समराइज्ड आप क्या घर लेकर के जाएंगे वानप्रस्थ लाइफस्टाइल में? प्रैक्टिस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, कम खाएं, सिंपल खाएं, सिंपल पहने, दिखावटी आर्टिफिशियलिटी बंद कर लीजिए, महंगे पेखे पहनना, चमकदार पहनना, महंगे गाड़ी, महंगे कपड़े, पैसा है तो भी मत करिए, किसी काम के नहीं है, जवानी में कर लिया, गृहस्थी में कर लिया, बहुत हो गया, अब सिंपल खाना खाइए, सिंपल घर में रहिए, सिंपल कपड़े पहनिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को ज्यादा करिए, माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करिए, अपने एक्यूमुलेशन को इकट्ठा करने की आदत को कम करिए। पहले आपके क्लोजेट में 200-300 कपड़े होते थे, उसको 10-15 तक लाने की कोशिश करिए, अपनी जो भी बिलोंगिंग है उनको मिनिमम करने की कोशिश करिए, इवन जो खाना आप इंटेक करते हैं उसको भी कम करिए, कल 4 रोटी खाते थे तो 2 रोटी खाइए, 2 खाते थे तो 1 खाइए, और सॉलिट्यूड की को पसंद करने की डेवलप करिए, डेवलप लाइकिंग फॉर सॉलिट्यूड, अकेले रहना, एकांतवास को एंजॉय करने की कोशिश करिए, अकेले रहने की एंजॉय करिए। जब अकेले रहने को कहता हूं, कुछ समय ऐसा निकालिए जहां ना टीवी है, ना कंप्यूटर है, ना फोन है, कुछ भी नहीं, सब बंद, बस आप अकेले ही अकेले, ऐसे एकांतवास को एंजॉय करिए, कम बोलिए। वानप्रस्थ में रहने वालों को मुनि कहा जाता है, मुनि मतलब जो मौन रहता है, ज्यादा बड़र बड़र मत करिए, अब आपको कोई सुनने वाला नहीं है, वो इरिटेटिंग होगा, वो अननोइंग होगा, आपका पावर जा चुका है, अब मिनिमम बोलिए। आजकल पर हम उल्टा देखते हैं, एज बढ़ता जाता है, आदमी बहुत ज्यादा बोलता है, फिर लोग भाग जाते हैं, कम बोलिए, मौन रहिए, रेंडर सर्विस विद द सेंस ऑफ ड्यूटी एंड स्माइल, लोगों की सेवा करिए, प्राणियों की सेवा करिए, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ, कर्तव्य भाव के साथ, हम्बलनेस के साथ लोगों की भला करिए, और अपने आप को एंगेज करिए फुल टाइम 100% किसमें, सेल्फलेस वर्क में, सोशल सर्विस में, और इस भाव के साथ कि यह आपका ड्यूटी है। और ये मत भूलिए कि आपको हेल्दी भी रहना है, आपकी जो डेली रूटीन, एक्सरसाइज करना हो, योगा करना हो, प्राणायाम करना हो, मेडिटेशन करना हो, खान पान का ध्यान रखना, अपने आप को हेल्दी रखिए। और अगर आप ऐसा सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, पार्शियली रिटायरमेंट लीजिए, धीरे 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 करते रहिए, और 5 साल, 10 साल, 15 साल पड़ा है, आप जरूर एक अच्छे वानप्रस्थी बनेंगे, और वानप्रस्थी आपको संन्यास की ओर ले जाएगा। अगली बार हम जानेंगे संन्यास आश्रम क्या है, तो आपने ध्यान